स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में वैराग्य और बोध के अनंतर तीसरे भक्ति प्रकरण पर विचार चल रहा है। वैराग्य मान हुआ संसार की विषयों से चित्त की वृत्ति हटी, फिर अपने स्वरूप का बोध हुआ, मैं असंग निर्लिप्त आत्मा हूं। देखना, मन का एक स्वभाव होता है कि कोई न कोई तस्वीर अपने भीतर बना ही लेगी। एक दर्पण का क्या होगा, स्वभाव होता है। दर्पण में एक विशेषता होती है कि दर्पण के सामने कोई तस्वीर रखोगे ना, और 10 साल तक दर्पण के सामने रखी रहेगी ना, तो भी उसकी तस्वीर उसमें पड़ेगी तो, लेकिन तस्वीर जाएगी ना, तो उस दर्पण की उससे आसक्ति नहीं होगी। लेकिन मन में उससे एक विलक्षणता है, इस मन के सामने संसार का कोई विषय भोग 10 दिन दिख जाए तो उस विषय की आसक्ति अथवा उस विषय की कामना पैदा हो ही जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः, पता नहीं क्या मन में बड़ा वो है। अरे बुरा से बुरा जीव होवे ना, सही बता रहा हूं। एक ततैया होती, ततैया जानते हैं, वो भी एक दो रहे ना तो उसको क्या करते हैं, मार के भगा देते हैं। जब पूरा गुच्छा भी लग जाता है ना तो उससे भी मोह हो जाता है, बेचारी कहां जाएंगी हाँ, इनका भी आश्रय कौन है। जब तक वो आपको डंक नहीं मारेंगी तब तक आप उनको हटाने का प्रयास है, ठीक है कोने में पड़ी हैं, चलता है। तो बुरे से बुरे व्यक्ति का भी साथ रख ले ना तो उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाइयां दिखना शुरू हो जाती है। मन का बड़ा स्वभाव है, इसलिए मन एक बार जिस विषय का त्याग करके निकला है और निकल करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, फिर से वह मन उसी विषय में डूब न जाए, इसके लिए उस परमात्मा का चिंतन अनवरत होना ही चाहिए। तो परमात्मा के चिंतन, परमात्मा का जो चिंतन है जिसको हमें अनवरत लगातार करना है, कैसे करें? संसार में रह करके तो संसार दिखता है। तो कहा संसार में रह करके संसार दिखता है, लेकिन संसार का एक अधिष्ठान भी है जिसके ऊपर संसार टिका हुआ है। बताया ना, संसार में 5 चीजें हैं, नाम अस्थि भांति प्रियता एक है। क्या है? अस्थि भांति और प्रियता, ये परमात्मा का गुण है। नाम रूप क्या है? माया का गुण है। नाम रूप में ही और 3 का अंतर्भाव कर लो, नाम रूप जाति गुण और क्रिया, इसी में सारा संसार है। देख लेना, किसमें? नाम में। नाम ने उलझे हैं, मोहम्मद साहब या मोहम्मद अब्दुल मोहम्मद, हिंदू हो गया तो रामदीन, ईसाई हो गया जोसेफ, है ना, ये ईसाई है हिंदू है मुसलमान, नाम में ही तो हम उलझ गए। नहीं, रूप काला है गोरा है, जाति ब्राह्मण क्षत्रिय, देखा सारा गुण। अरे बड़ा सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमागुणी है, बड़ा कर्मठ है, और उन गुणों से होने वाली क्रियाएं, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उन बाबा ने काम कर दिया, उन सारा संसार इसी में उलझा हुआ। सच बताऊं, लेकिन इनके भीतर जो सबको संचालित कर रहा है, जिसके बिना ये सब कोई काम है, वही बताए ना, हमारी उसकी तरफ लड्डू मीठा तो दिखता है, जलेबी मीठी तो दिखती है, लेकिन चीनी को किसी की याद ही नहीं आती है। क्या आती है? बस जलेबी के रूप में, लड्डू के रूप में हम खो जाते हैं। अब बताए, चीनी का कोई नाम लेता है क्या? जिस मिठास के कारण लड्डू में मिठास आया है, मिठाई में मिठास आया है, उस चीनी की कोई चर्चा, कोई उस गन्ने की कहीं कोई चर्चा करता है क्या? वही हालत यहाँ है। वस्त्र की तो चर्चाएं हो जाती हैं, इस सूत की कोई चर्चा करता नहीं है। तो सारे संसार की हम चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन उन संसार को सत्ता देने वाला उस परमात्मा की हम कोई चर्चा करते नहीं है। तो वह परमात्मा सत रूप में, चित रूप में, आनंद रूप में सबके द्वारा व्यक्त हो रहा है, तो हम उसको पी लेवें। किसको पीना है? सत चित आनंद को क्या करना है? पीना है। किस और किसको छोड़ देना है? नाम रूप रूपी जहर को, क्योंकि ये माया रूपी जो अविद्या रूपी पूछना है, ये नाम रूपी जाति गुण क्रिया का ही जहर लगा के आई हुई है इन भोग पदार्थों में, अपने स्तनों में। तो हमें उसको नहीं पीना है, उसका त्याग करना है, और उसको सत्ता देने वाले उस नाम रूप अस्थिभाति रूपता का ही, अस्थिभाति और प्रियता का ही पान करना है। ज्ञानी इन लीलाओं में साधना देखता है, भक्त इन लीलाओं में भगवान की अनुग्रह देखता है। क्या देखता है? भगवान का, कि इन सब रूपों में ही भगवान आकर के हमारे ऊपर कोई न कोई कृपा कर रहे हैं। अब भगवान जहां भी आए हैं, जिसके भी रूप में आए हैं, किसी न किसी रूप में क्रिया ही किए हैं। जैसे कल थोड़ा कथा याद आपको होगी, एक बच्चा खेलता है किसी वस्तु से, तो माँ पहले क्या करती है? समझाती है। तो समझाने पे न माने तो डांटती है, डांटने पे न मारे तो मारती है, और मारने पे न माने तो उस विषय को नष्ट कर देती है। ऐसे हम चाहे संसार के किसी विषय से हम आसक्त होते हैं, तो पहले गुरु रूप में परमात्मा ही आकर के हमें समझाता है। तो गुरु रूप में कौन आया है? परमात्मा ही आया है हमें समझाने के लिए। तो गुरु परमात्मा से अलग नहीं है, वह भी किस रूप में हुआ? परमात्मा ही रूप में है। यदि हम न समझे तो जिससे आप आसक्त करते हो, उस आसक्त वाली वस्तु आपको डांटती है। तुलसीदास जी को डांटा नहीं? अरे जितना प्यार तू इस हड्डी मांस के चाम से कर रहा है, उतना प्यार यदि तू राम से कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। किसने किया? रत्नावली ने डांटा? नहीं डांटा। तो रत्नावली ने डांटा, परमात्मा ने डांटा? रत्नावली के रूप में कौन आया है? परमात्मा ही आकर के उनको क्या किए? डांट खिलाए। तो आपके भी परिवार में जो डांट वो मिलती है ना, आपको जो तिरस्कार मिलता है ना, तो परिवार वाले आपका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? उनके रूप में परमात्मा ही आपका तिरस्कार करवा रहे हैं कि भरोसा इन पे मत करना, भरोसे के योग एक योग्य है परमात्मा ही है, संसार तो धोखा ही देने वाला है। चलो इससे भी न माने तो क्या मिलेगी? थप्पड़, मार। हम कहां नहीं खाते हैं बताओ, कितनी बार लात नहीं खाते हैं। इस पर भी न माने तो जिस वस्तु से आप खेलते हो, उस वस्तु को ही नष्ट कर डालेंगे परमात्मा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, उसको नष्ट ही कर देंगे। इस तरह से परमात्मा तमाम रूपों में आकर के हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो कल इसी में हम लोगों ने चिंतन किया कि परमात्मा सारे दुख को भी बचाते हैं। धोबी के रूप में कौन आया था? लोभ और संग्रह की वृत्ति को भी समाप्त करते हैं, क्योंकि जो वस्तु हमारे पास है वह दूसरे की क्या है? अमानत है। धन है तो गरीब की अमानत है, शक्ति है तो कमजोर की क्या है? अमानत है। जैसे व्यक्ति आवे अधिकारी, तुरंत आप अपने इस वस्तु को, शक्ति, उसकी सेवा में लगा दो। बुद्धि दिया है तो किसकी? अनपढ़ों की। वह क्या है? अमानत है, उनको आप शिक्षा दे दो। उस पर लोभ मत करना। फिर बताया कि रूप का अभिमान दूर कर देते हैं परमेश्वर। किसके रूप में? कुब्जा के रूप में। मैंने बताया कुब्जा पहले कौन थी? सुपंखा। जिसको रूप का अभिमान था, तो भगवान ने उसके रूप को अभिमान करके यहां क्या बना दिया, कुब्जा बना दिया, कुरूप बना दिया। अब रूप का अभिमान नहीं करेगी, अब रूप का अभिमान छूटा तो कुब्जा से वो क्या हो गई, सरल। फिर भगवान ने उसको क्या बना दिया, सीधी बना दिया कि अब तू देखने लायक हो गई, अब तू दर्शनी हो गई। पहले भी जो सच्चे रूप में भी आई थी ना, तभी तू दर्शनी नहीं थी, नकली रूप में आई थी, तो क्योंकि ऊपर से तो सुंदर लग रही थी लेकिन अंदर से क्या थी, कलुषित थी। अब जो आई है ना, ऊपर से तो भले मलिन दिख रही है लेकिन अंदर से तू क्या है, भामनी है, सुंदर है अंदर से तू। अब भगवान कहते हैं, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, निर्मल जन जो सो मोहि पावा। लेकिन क्या करें, ये देहाभिमान भाई मेरे को छोड़ो। देहाभिमान क्या करना है, फिर बल का अभिमान। बल के अभिमान में कुवलया पीठ को भगवान ने क्या किया, मारा। जब ये मरा तो चार पहलवान थे, अथवा कितने, दो को बलराम जी ने मारा, दो को कौन मारा, श्री कृष्ण ने मारा। तो भगवान ने दो को मारा, दो को मारने का मतलब धर्म और अर्थ को मार डाला। चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो भाई जब हमें अर्थ क्यों चाहिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, जब हमारी कामनाओं की पूर्ति ही समाप्त हो गई, जब हम अपने आप में ही तृप्त हो गए, आप तक काम हो गए, तो अर्थ की भी आवश्यकता नहीं रह गई। हाँ, अर्थ इतना चाहिए जितने में जीवन का, इसके लिए भगवान ने आज्ञा दिया है, ध्यान देना, किसके लिए, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन न आपनोति किल विषम। शरीर मात्र निर्वाह के लिए जितने कर्म की आवश्यकता है, जितने अर्थ की आवश्यकता है, उतना कमाओ, उसको कमाने में भी आप पाप के भागी नहीं बनोगे। लेकिन अनावश्यक तो वो आपकी कामनाओं को ही बढ़ाएगा। अभी वो बता रहे थे महाराज, बहुत काम धन है लेकिन फिर भी त्याग होता नहीं, सेवा होती नहीं। चलो, यहां तक हम लोगों ने कल विचार कर लिया था। यदि चार को मारने की बात आवे तो भाई धर्म अर्थ तो मरेगा ही मरेगा। और अर्थ से कहो हम काम नहीं सिद्ध करते हैं, अर्थ से हम धर्म सिद्ध करेंगे। आप यही कर सकते हो ना, हम तो प्रेमपुरी में आने वाले बंदे हैं, हम अर्थ कमाते हैं तो भोग की सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि अर्थ कमाते हैं किसके लिए, धर्म की सिद्धि के लिए। तो भाई प्रेमपुरी में आने वाला व्यक्ति ना धर्म के भी ऊपर उठ जाता है, क्योंकि धर्म से क्या मिलेगा, बोलो भाई, स्वर्ग। धर्म से क्या मिलेगा, स्वर्ग। अक्षुणे पुण्य मृत्युलोके विशंति, अथवा प्रेमपुरी में आने वाला व्यक्ति तो ब्रह्मलोक के भी सुख को क्या समझता है, तुच्छ तिनका समझता है। तो स्वर्ग के सुख की तो कहने की बात ही क्या है। तो ऐसी कोई पूंजी नहीं इकट्ठा करना चाहता है कि उसको स्वर्ग अथवा और किसी भोग की प्राप्ति हो। कहो महाराज जी, मोक्ष की इच्छा होगी, कहते मोक्ष पाने के बाद, पाने माने अपने आप को मोक्ष स्वरूप जान लेने के बाद भी, क्योंकि मोक्ष मेरे से अलग नहीं है, मोक्ष मेरा अपना ही क्या है, स्वरूप ही है। ऐसा जानने के बाद उसकी भी इच्छा समाप्त तो हो जाती है। तो चारे पुरुषार्थ क्या हुए, मिट गए, शांत हो गए। लेकिन थोड़ा सा भी मैं बचता है, थोड़ा सा मैं बचता है, क्या सर, मैं कृतकृत हो गया हूं, मैंने ये सारी साधनाएं कर ली हैं। कई लोग कहते हैं ना, जो कुछ करना था मैंने कर लिया। अरे भाई, ये भी बोलती बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये यदि सूक्ष्म अभिमान रहेगा ना, तो कल ये पूरा संसार दोबारा भी खड़ा कर सकता है। तो इस सूक्ष्म अभिमान के रूप में कंस को भी भगवान ने क्या किया, समाप्त कर दिया। इसको यहां बता रहे 238वें श्लोक में, देह कृताद अपराधात वैकुंठ उत्कंठितांतरात्मानम यदुवर कुलावतंसम कंसम विध्वंसयामास। देह कृतात अपराध, अपने देहकृत क्या है, अपराध से ही कंस ने अपने शरीर के द्वारा बड़ा अपराध किया था। जानते हैं क्या क्या अपराध किया था, बोलो भाई। एक तो अपने पिता को सिंहासन से क्या किया, उतार दिया और खुद उसका क्या बन बैठा, राजा बन बैठा। पहला अपराध। दूसरा, अपने पिता को जेल में डाल देना, कौन सा अपराध है, दूसरा अपराध। तीसरा, देवकी और वसुदेव के जितने शिशु थे उन शिशुओं की हत्या कर डालना, मारना, नवजात शिशुओं को मारना। इन्हीं अपराधों के द्वारा ही वह क्या चाहता था, वैकुंठ उत्कंठित अंतरात्मना। उनका मन बड़ा, सही बताऊं, व्यथित था। आपको लगता होगा अपराधी बड़ा सुखी होता है, खून खराबा करने वाला व्यक्ति बड़ा शांत तो होता है नहीं ना, मौज मार रहा है। लेकिन सही बताऊं ना, उपस्थित भले उसके जीवन में 10 गाड़ियां 10 बंगले 10 सूटर आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन अंदर से वह अपने किए हुए कर्मों के द्वारा न इतना व्यथित तो होता है कि सोचते हैं कि जीवन में हमसे कर्म कब छूटे। लेकिन बेचारा एक बार फंस जाता है न तो निकलना वहां से, क्योंकि निकलने का प्रयास करता दूसरा उसका व्यक्ति प्रतिद्वंदी उसको क्या करता है, स्विच आउट कर देता है, भाग डालता है। तो बेचारा करे भी तो क्या करे, मजबूरन उस हत्या की दुनिया में उसको क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है। लेकिन अंदर अंदर उसके मन में क्या होती है, एक व्याकुलता, एक तड़प होती है, किससे, अपने किए हुए अपराधों के कारण। उन अपराधों से ही वह वैकुंठ की उत्कंठा करने वाला जो कंस था, उस कंस को भगवान श्री कृष्ण ने मार करके उसको नष्ट करके उसको भी अपने लोक की प्राप्ति करा दिया। तो कहते बैर भाव से भी भगवान को भगवान ने भी मारा, और बैर भाव से ही खुद मरा है। कहते वो मारे, भगवान मारने की हिम्मत हुई नहीं, वो उसको हार्ट अटैक आ गया। कई लोग बोलते हैं भगवान जैसे छलांग लगाए ना, कहां पे, सिंहासन पे, तो ऊपर से कहां गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरते ही क्या हुआ, गिरा और मरवा। जैसे ही हाथ उठाए मारने के लिए, पता लगा गया, तो भगवान को मारने की नौबत नहीं आई है। उस ज्ञान के स्वरूप को देख करके अभिमान तो एकदम अपने आप गायब ही हो जाता है। प्रकाश अंधकार कितना भी घना होवे, ज्ञान रूपी प्रकाश आवे न तो वह प्रकाश कहां हो जाता है, एकदम गायब हो जाता है। अब उस अभिमान ने अपराध क्या किया है, बोलो भाई। पहले अपने पिता को सिंहासन से छीना, तो अभिमान ने ही आपको अपने सिंहासन से उतार दिया कि नहीं उतार दिया। जो आपका अपना सिंहासन था, कौन सा सिंहासन, स्वराज्य सिद्धि, अपने स्वरूप पर जो आप प्रतिष्ठित थे, मैं असंग निर्लिप्त आत्मा हूं, आपको वहां से क्या किया, हटाया, और हटा करके मैं देव हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, इस जेल में डाल दिया। इस बेड़ियों में डाला, नहीं डाला तो डाला, और अभिमान उसका मालिक बन बैठा। और देवकी के नवजात शिशुओं को मारना के लिए जितनी सद्वृत्तियां थी, उस अभिमान ने उन सद्वृत्तियों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इन्हीं अपराधों के द्वारा वह अपने स्वरूप पर प्रतिष्ठित होना चाहता था, और कम से कम उसका चिंतन तो चलता रहा ना। अपराध भले उसने शरीर से किया, इन मन से चिंतन किसका चल रहा है, उस ईश्वर का चल रहा है। तो मन के चिंतन से ही जो संस्कार बना, उस संस्कार से ही उसको वैकुंठ के धाम की प्राप्ति हुई। महाराज, इसके विषय में आपके पास क्या कोई प्रमाण है क्या? कहते हाँ, एक प्रमाण है कि रावण भी राम से बैर बांध करके ही मुक्ति की कामना करना करता था, क्योंकि रावण खुद जानता है कि प्रेम से जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, उसका चिंतन द्वेष से ज्यादा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं आपके यहां बड़ा खिलाया पिलाया, सेवा किया, सब कुछ किया, बढ़िया कथा सुनाया, तो आप कम से कम मेरी याद करोगे नहीं करोगे, बताओ कितने दिन तक, जब तक दूसरे महात्मा न आ जाए, इसके बाद तो भूल जाते हैं, है नहीं। लेकिन यदि मैं इसी मंच पर बैठ करके आपको खरी खोटी सुना करके, ऐसी तैसी करके मैं चला जाऊं, तो बताओ 10 साल बाद भी कहेंगे सर्वेश चेतन जी को मैं यहां भेजूं क्या प्रवचन करने के लिए, तो आप क्या कहोगे, ना बाबा ना सर्वेश चेतन जी को मत भेजना, यही कहोगे नहीं कहोगे। अब वो दस एक दिन की खरी खोटी से आपके हमारे मन में जो नफरत पैदा हुआ, वह नफरत कई सालों तक आप भूल, और जो मैंने आपका बहुत ध्यान दिया, जब गए प्रसाद खिलाया, सत्संग सुनाया, बड़े प्रेम से बोले, वह प्रेम की बातें तो दो चार दिन में क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, लेकिन नफरत की बातें सोते जगते उठते बैठते आपको हमेशा याद बनी रहेगी। इसलिए रावण ने भी सोचा राम से राम का भजन प्रेम से तो होता है ही नहीं, इसलिए बैर का भाव रख करके ही यदि हम राम से दुश्मनी करेंगे तभी मेरी इन अपराधों से मुक्ति होगी। सही बता, रावण भी जीना नहीं चाहता है, रावण भी यथार्थ में क्या करना चाहता है, मरना ही चाहता है। अध्यात्म रामायण में पढ़ो, जब उसने सोचा, जब सुपंखा ने संदेश दिया, क्या संदेश दिया कि खर और दूषण को भगवान राम अकेले मार डाले, तो कहते हैं निश्चित ही राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो साक्षात नारायण के ही अवतार हैं, इसलिए उनसे मैं दुश्मनी लूंगा और उनके हाथों खुद मर करके अपना और अपने परिवार का कल्याण कराऊंगा, ऐसा अध्यात्म रामायण में आता है। यहां भी कहते हैं रावण सनत कुमार से पूछा कि सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति कैसी होए, तो कहते हैं बद्ध्यो यदि श्याम परमात्मना अहम, यदि मैं परमात्मा के द्वारा मारा गया तो बैकुंठ राज्यम परिपालये अहम, तो बैकुंठ के राज्य का भोग भोगूंगा। इत्थम विचिन्त्य, ऐसा विचार करके अखिल राक्षसेन्द्रो, संपूर्ण राक्षस समूह का जो मालिक था, राजा था, ऐसा विचार करके रामम विदित्वा परमेश्वरम हरिम, राम को परमेश्वर अथवा हरि जान करके ही ऐसा निश्चय किया कि विरोध बुद्धिया एव हरिम प्रयामी, मैं विरोध बुद्धि से ही भगवान की शरण में जाता हूँ, द्रुतम न भक्त्या भगवान प्रसिद्ध, क्योंकि जानता हूँ कि भक्ति के द्वारा भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, ऐसे अपराधी को मार करके वह भगवान जल्दी ही मुक्त कर देते हैं। कंस की भी स्थिति थी, सनित्य उद्दिग्न धिया, उद्दिग्न बुद्धि से हमेशा उस ईश्वर को पीते हुए, बोलते हुए, घूमते हुए, सोते हुए, सपना भी देखता था, श्वास लेते हुए, हर पल उसको भगवान कृष्ण ही चक्र लिए हुए दिखाई देते थे, और इसके फल स्वरूप भले उसने द्वेष बुद्धि से परमात्मा का चिंतन किया, लेकिन मरने के बाद उसको भी परमात्मा लोक की प्राप्ति हो गई। तो कहने का भाव है कि आप कहीं भी किसी भी अवस्था में कर्म करो, लेकिन आपका चिंतन उस परमात्मा से बना रहे तो निश्चित ही मन के चिंतन के कारण ही आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे प्रेम से करो, चाहे किससे करो, नफरत से करो, लेकिन मन में संस्कार बनना चाहिए, कैसा भगवताकार संस्कार बनेगा तो भगवान के लोक की प्राप्ति होगी। अब भगवान कंस को मारे और अपने स्वरूप पर क्या हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। और भगवान कभी कभी मारते हैं नहीं, ओ बिना संसार देखे ही, बिना संसार को देखे ही जल्दी मार डालते हैं, ये तो गलत काम करते हैं ना भगवान। अरे भगवान मारे भी तो कम से कम 70 साल की उम्र में मारे, कितने साल में, 70 के 100, कितने साल में हम लोग मरना चाहते हैं, 110 में देख लो। आप आजकल नए बच्चे ने उनसे कहो कि तुम्हारी उम्र 80 साल है, बाप रे इतना जीऊंगा, नहीं महाराज इतनी उम्र नहीं चाहिए, 60-70 चाहिए। आजकल बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, 60-70 से ज्यादा हमें संसार में जीने की इच्छा है ही नहीं। तो भगवान 60-70 भी नहीं मार करके 20-25 मार दे रहे हैं, ये भगवान का कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, अन्याय नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं कि यहां भी मैं उसके साथ न्याय ही करता हूं, अन्याय नहीं करता। कैसे, मैंने पहले दिन बताए थे, हर व्यक्ति की योग्यता क्या है, अलग अलग है। कोई व्यक्ति संसार के दलदल में घुसे अब घुस के डूब के मरे, जिसको तैरना नहीं आता है, तो उसको वहां से डुबाने के पहले ही उसको उस दुख से बचा करके उसको मुक्त कर देते हैं। ऐसा किसको मुक्त किया तो कहते चेदी राज शिशुपाल को। किसको? चेदी राज शिशुपाल को। हरि संदर्शन योगात पृथुरंग तीर्थे निबज्जते तस्मयी भगवान नु तदद्याद्य सद्यश्चैद्याय सायुज्यम। कहते हरि के दर्शन का योग से शिशुपाल को न परमात्मा के योग का एक संबंध मिल गया। कब संबंध मिल गया? कहते बचपन से ही। सही बताओ, बचपन से ही। कहते उसके कितने सर, हाथ थे कि सर थे, क्या था? हाथ कितने थे? चार थे, ऐसा पता नहीं कुछ पकड़ना। तो बड़ा अटपटा लगता था दिखने में, हाथ कुछ था ऐसे, उसका कुछ विकृत अंग था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। शिशुपाल का कुछ विकृत अंग था, तो जैसे दो हाथ हो जाए, तीन हाथ थे, अथवा कुछ ऐसा विकृत अंग था। तो वो जैसे ही भगवान उसकी बुआ के लड़के थे, तो शिशुपाल की मां ने शिशुपाल को भगवान की गोद में दिया, तो उसका वो एक हाथ जो ज्यादा था वो उड़ के चला गया, एकदम दो हाथ निकल गए, ऐसा आता है। तो चार हाथ थे, दो हाथ उसके क्या हुए, एकदम गायब निकल गए। तो उसको ऐसा आकाश मांगी थी जिसकी गोद में ये जाएगा, और जाने के बाद इसके हाथ जो निकल जाएंगे उसी के हाथों से इसकी मौत होगी। तो बुआ बेचारी परेशान हो गई, शिशुपाल की माता, खे प्रभु आप मेरे बच्चे को क्षमाधान दो, बचाओ, क्योंकि हमारा बच्चा आपके हाथ ही मरेगा, क्योंकि आपकी गोद में जाने के बाद इसके दोनों हाथ गायब हुए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं बुआ, मैं इसकी 100 अपराधों को क्या करूंगा, माफ कर दूंगा, 100 के बाद तो मैं माफ नहीं करूंगा। लेकिन ये बात देखो, शिशुपाल को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से पता चली गई होगी। तो शिशुपाल को जब पता चल गया कि मेरी मौत किसके हाथ होनी है, कृष्ण के हाथ होनी है, तो वो भी बचपन से लेकर के चिंतन किसका कर रहा है, कृष्ण कृष्ण। अरे भाई जिसके हाथ मेरी मौत होगी तो बताओ उसका चिंतन चलेगा नहीं चलेगा? और चिंतन चला, लेकिन उन दोनों का सामना आमना बहुत कम हुआ है। युद्ध के मैदान में भी जब रुक्मणी का अपहरण कर रहे थे ना, तो वहां भी शिशुपाल का कृष्ण के साथ संबंध नहीं हुआ, वो कृष्ण को रुक्मणी को लेकर चले गए, और उधर बलराम जी महाराज ने पूरी उस सेना का क्या किया है। अब शिशुपाल तो दूल्हा बन गया था ना, तो वो तो कमरे में बैठा था, शिशुपाल के जितने संबंधी थे वो संबंधी सब क्या किए, बलराम की सेना को के साथ लगे, और बलराम ने उनको क्या किया, हरा दिया। हराने के बाद जरासंध शिशुपाल के पास जाता था, गया, और बड़ा शिशुपाल उदास था, तो वहां उपदेश देते हैं जरासंध कि जीत हार तो जीवन का एक खेल है, मैं भी देखो भगवान से कितनी बार हारा, एक बार जीता, लेकिन जीतने की न मेरे को कोई खुशी है, न हारने का न मुझे कोई गम है, दुख है, क्योंकि जीवन है तो सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी मिलेगी। कोई यह नहीं कह सकता कि जीवन में हमारे हमेशा अनुकूल ही परिस्थिति मिले। आज समय कृष्ण के अनुकूल था इसलिए कृष्ण ने जीत दर्ज की, कल समय हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी उनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, तुम चिंतन छोड़ो। तो शिशुपाल का कृष्ण के साथ संबंध क्या था, सामना बहुत कम हुआ, लेकिन राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का सामना किसके साथ हो गया, कृष्ण के साथ हुआ। तो हरि संदर्शन योगात भगवान के दर्शन के योग से, भगवान के दर्शन के योग से जो शिशुपाल डूबने वाला था, कहां डूबने वाला था, निबज्जते तस्मयी, कहा रंग तीर्थ, रंग रूपी तीर्थ में। अच्छा बताओ शिशुपाल को यदि भगवान ने न मारा होता तो शिशुपाल कहां जाता, दुर्योधन की सेना में जाता, होता नहीं होता, भर्ती बताओ, और दुर्योधन की सेना में भर्ती होता तो महाभारत रूपी महायुद्ध में डूबता नहीं डूबता, और उस महाभारत रूपी युद्ध में डूब करके कितनों की हत्या हुई होगी, कितने सगे संबंधी मरते, तो उनके मरने का दुख होता नहीं दुख होता। अब हो सकता है उस युद्ध में उसके एक हाथ एक पांव कट जाते तो भी उसका दुख होता नहीं दुख होता। तो परमात्मा जो क्या है, महाभारत रूपी युद्ध के दलदल में डूबने वाला था, भगवान ने उसको उस डूबने से बचा लिया पहले ही मार करके। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, महाभारत रूपी युद्ध से डूबने से पहले उसने क्या किया, भगवान ने बचा लिए। कहते निमज्जते तस्मै, जो महाभारत रूपी युद्ध में डूबने जा रहा था और वहां जाकर किसके हाथ मरता, कैसी मौत मरता, कोई पता है क्या? तो भगवान ने उसको वहां से बचा करके और अपने हाथों उसको मार करके उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति करवा दिए। ये भी भगवान की शिशुपाल के ऊपर क्या है, कृपा है। अच्छा, पहले मरना बुरा है कि अच्छा है, बताओ। चलो, कभी कभी आप देखना जीवन में, सबको देखो कहना बड़ा आसान है लेकिन जीवन में पड़ता है तो बड़ा दुख होता है। हम सब व्यक्ति इस संसार में क्या भोगने के लिए आए हैं, बोलो भाई? कर्म का फल। तो कर्म का फल क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता सुख ही सुख मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। यदि सुख ही सुख मिलना होता तो वो पुण्य कर्मों का फल है, तो हम देवता बने होते। देवताओं को क्या मिलेगा वहां? सुख ज्यादा है, दुख थोड़ा सा कम है। यदि हमारे जीवन दुख ही दुख होता तो पशु पक्षी वृक्ष बने होते, वहां सुख कम है और दुख ज्यादा है। लेकिन हम हैं क्या? मनुष्य। तो मनुष्य हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में दो पूंजी होगी, एक सुख की होगी और दूसरी किसकी होगी? दुख की पूंजी होगी। तो दोनों आपको भोगना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मेरे को बता दो। पक्का भोगना पड़ेगा। अच्छा, सुख भोगने के दिन कितने दिन होते हैं मेरे बता दो। चलो है? अरे जवानी, जवानी भी क्या 25-30 साल, क्या बचपन के वो दिन थे, क्या वो मस्ती थी, क्या वो समय था, अब तो सोचते ही नहीं है, होता है बता। तो सुख का क्षण कितने काल तक है? 20-22-25 साल तक नहीं। आ इसके बाद किसकी पूंजी शुरू हो जाती है? दुख। और जितने मात्रा में समय बीतता जाता है दुख, देखो माताएं पहुंचती, महाराज जी चलना बंद हो गया है, कमर में दर्द हो रही है, सुनाई नहीं देता है, बच्चे तिरस्कार करते हैं, पेट खराब हो गया, इतना रोना। यदि परमात्मा इन दुखों के पाने के पहले ही आपको इस शरीर से मुक्त करवा देवे, बताओ भगवान अच्छा है बुरा है मेरे को बता दो। लेकिन आपको क्या लगता है? कहो नहीं महाराज जी, फिर भी 60-70 में उम्र होनी चाहिए, मरनी नहीं गई, ये 25-30 साल मरे तो क्या करे? देखो भक्त का विचार है। एक बार मैं खंभात में चातुर्मास कर रहा था, कहां पे? खंभात में। तो एक आदमी का इकलौता लड़का 25 साल में मर गया, शंकर जी का बहुत बड़ा भगत था, बाप को भी हार्ट अटैक की बीमारी, एक ऑपरेशन हो गया। महाराज जी बस बेटे का गम भूलता नहीं है, बहुत दुख होता है। शंकर जी का बड़ा भक्त था, बड़ा आज्ञाकारी था। अब भाई देखो, हम सब मिलकर के रोएंगे तो बच्चा वापस आने वाला तो है ही नहीं, अब उसके मन को कहीं न कहीं सांत्वना तो देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। तो मैंने यही समझाया, देखो भाई भगवान का भक्त था, यहां से मर करके कहां गया होगा? यदि भगवान का चिंतन करते हुए उसने कोई पाप कर्म नहीं किए हैं तो कहां गया होगा? भगवान के लोक में। तो उसका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ है मेरे बता दो। यदि आपका बच्चा भले आपको 5 पैसा न देवे, सही बता रहा हूं, लेकिन अमरीका रह करके 5 लाख कमा रहा है न, तो पूरे मोहल्ले में शान से कहते हो महाराज जी मेरा बच्चा कहां रहता है? दोनों बच्चे अमरीका में रहते हैं, इतना कमाते हैं, ये करते हैं, भले तुम्हें 5 पैसा न दे मैं, लेकिन मानसिक आप अपने बच्चों की प्रोग्रेस देख करके क्या होते हो? तो बताओ इस शरीर को छोड़ करके हमें दिव्य देवताओं के शरीर लोक में रहने का अवसर मिल गया, जहां छल कपट वाले लोग थोड़ा कम निवास करते हैं, अच्छे विचार वाले लोग रहते हैं, सुख संपन्न वाले देश में रहने का अवसर मिल गया, तो अच्छा हुआ बुरा हुआ मेरे बता दो। महाराज अभी दुनिया में कुछ देखा नहीं था, उसकी बात मैं बता रहा हूं, दुनिया में कुछ देखा नहीं था, तो ये आप समझ गए ना दुनिया में कुछ न देखने का मतलब, नहीं समझ में आया? हाँ सारी वो कोई बोली दिया सारी नहीं, मतलब एक कदम नरक का दर्शन नहीं किया था और क्या, यह लात नहीं खाया था पत्नी के, उसका तिरस्कार नहीं सहा था। अब कहीं मान लो विवाह होने के बाद उसकी मौत होती तो चिंतन किसका करते मरता, सही बताओ? हाँ, मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, कहाँ जाएगी, तू शादी मत करना दूसरी, मेरे नाम पे जीजा नाम, तमाम लोग क्या क्या बोलते हैं। अब बताओ मरने के बाद यह चिंतन करते हुए व्यक्ति शरीर छोड़ता तो बताओ पत्नी के यहां ही किसी किसी रूप में गर्भ लेना पड़ता नहीं लेना पड़ता? हो सकता उसी पत्नी का बेटा बन के आ जाता यदि वो पत्नी दूसरी शादी कर लेती, और फिर दूसरी शादी करती तो उससे विद्रोह होता तो बेटा मां की क्या होती, लड़ाई बसती, इस जन्म का खेल किस जन्म में भोगते, उस जन्म में भोगते। जैसी वासना करके मरोगे उससे बदला लेने के लिए आओगे कि नहीं आओगे बता? तो भाई इन सारे दुखों से, जगत का तिरस्कार सहने का दुख, जगत में अपमान सहने का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारी का दुख, सबसे मुक्त करके मौत के रूप में भी भगवान हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, कृपा ही कर रहे हैं। इसलिए मृत्यु भी एक अनुग्रह है, आप क्यों नहीं समझते? ये अभी आए नहीं, एक रमेश भाई आते हैं यहाँ कथा में, इस बार पता नहीं आए नहीं, लग रहा है आए नहीं, तबीयत नहीं ठीक। कल एक दिन वीडियो दिखा रहे थे व्हाट्सएप में, उनकी आया था एक कोई वहां का बनारस में कोई बुद्धा है गांव में, कहते हैं 156 साल का हो गया है, मौत ही नहीं आ रही है। कहता मौत मेरे को भूल गई है, मेरे सामने मेरे पोते मर गए, मेरी बहुएं मर गई, मेरे बच्चे मर गए, लेकिन मौत मेरे को नहीं आ रही है। वो मौत मांगता लेकिन मौत नहीं आ रही, सोचो उसके उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। आप सुनो 156 साल का व्यक्ति जिसके सामने उसके पोते बहुएं मर जाए, बेटा मर जाए और बाप जिंदा रहे, तो दुख होगा नहीं दुख होगा? तो मौत के रूप में भी परमात्मा हमारे ऊपर क्या कर रहा है? तो शिशुपाल को इस कौन से युद्ध में, एक तो महाभारत का युद्ध है और दूसरी महाभारत का युद्ध आप लोग भी करते हो, संसार ही सबसे बड़ा क्या है, महाभारत है। इसमें दिन रात कहीं न कहीं खींचा तानी मेरी तेरी चल रही नहीं चल रही है, इन सारे दलदलों में जाने से उस परमात्मा ने क्या किया, शिशुपाल को बचा करके उसको मुक्त कर दिया। इस मुक्ति के रूप में भी भगवान हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। कहते भगवान कृपा करें तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी मारे तो नहीं अच्छा लगता है, नहीं पड़ोसी तिरस्कार करे तो नहीं अच्छा लगता। भाई तुम पड़ोसी को पड़ोसी क्यों समझते हो, मेरे नहीं लग रहा है पड़ोसी, मैं अभी बताया पड़ोसी के रूप में भी कौन है, पर ये मत भावना रखो कि पड़ोसी है, ये भावना रखो कि उसके रूप में ही भगवान आकर के हमें शिक्षा दे रहा है। दत्तात्रेय जी महाराज के लिए सारा संसार ही क्या था, गुरु रूप था, और गुरु ही क्या होता है, भगवान रूप है, तो सारे संसार के रूप में परमात्मा ही आकर के हमें किसी न किसी रूप में शिक्षा दे करके हमारे दुखों को बचा रहे हैं। भगवान यह भी आगे समझा रहे हैं, मीनाद भी अवतारई है निहता सुर विद्युषो बहव नीतास्ते निज रूपम तत्र च मोक्षस्य कावार्ता। मीनाद भी अवतारई है, अरे 31 वाले अवतार की बात छोड़ दो, मैंने तो सब अवतार लिए हैं। कौन सा अवतार, मीन के रूप में पैदा हुआ, कौन के रूप में, मीन माने मछली के रूप में भगवान पैदा हुए, कक्षप के रूप में पैदा हुए भगवान, शेर के रूप में, नरसिंह के रूप में पैदा हुए, सरभ माने एक पक्षी के रूप में भगवान पैदा हुए, सरभ है, कृष्ण का अवतार नहीं है, विष्णु का, ओ कृष्ण, ओ शंकर का अवतार है, किसके रूप में, सरभ एक पक्षी के रूप में भगवान का अवतार हुआ। हर अवतारों के रूप में हमने देवद्रोहियों को मार करके उनको अपना रूप ही प्रदान कर दिया, अपने ही स्वरूप की प्राप्ति करा दिया, तो फिर मोक्ष की बात ही क्या है। तो मीन आदि का मतलब क्या हुआ कि संसार के सब रूपों में अवतार किसका हुआ है, मेरा ही हुआ है, तो कोई भी तुम्हें मारने आवे न तो न समझाओ पड़ोसी मार रहा है, बल्कि उस समय भावना नहीं, बुद्धि में निश्चय होना, क्या निश्चय करना, नाम रूप जाति गुण को छोड़ देना, अरे इसके रूप में क्या है, वह परमात्मा ही तो आ रहा है, परमात्मा की सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, तो कौन किसको मार रहा है। एक महात्मा लोग कथा सुनाते नहीं सुनाते हैं कि एक कोई बाबा थे, सिद्ध बाबा थे, अपनी मस्ती में रहते थे। बाबा लोग तो अपनी फटी पुराने कपड़े मस्ती में रहते थे, और भूख लगी तो कुछ खाना था, तो किसी चोर ने वास्तव में किसी का तरबूज होता है खेतों में खा के फेंक दिया था, या किसी गृहस्थ ने ही। भाई देखो बंबई वाले लोग ना ऊपर से क्या करते हैं, एकदम लाल लाल माल निकालते हैं, और जरा सा भी गुलाबी वाला होगा ना उसको क्या करते हैं, छोंक देते हैं। तो खेत के सामने फेंक दिया, तो बाबा जी उसी खेत के पास गए और वो तरबूज था, उस तरबूज को क्या किए, खाना शुरू कर दिए, जो कटा हुआ लाल वाला आपने खा के फेंका था। तो उस किसान ने आया और किसान ने देखा कि एक चोर है हमारे तरबूज को खेत को निकाल के खाने वाला, तो उसने आओ देखा ना ते मारा लाठी, ओ बाबा क्या हुआ, बेहोश। देखा कि तैयार, बाद में जब देखा सामने से कि कटे हुए तरबूज है, मैंने गलत मारा, तो उसको लेकर के कहां ले गए, अस्पताल डॉक्टर के यहां। जब उनको होश में आया, नहीं वो तो भाग गया, कहते वो आदमी क्या हुआ, भाग गया, कौन जिसने मारा था वो तो क्या हुआ, भाग गया। तब तक ये दूसरे बंदे पहुंच गए, कौन, अरे गिरीश भाई पहुंच गए वहां, और गिरीश भाई को थोड़ा दया आ गई, और दया आकर के उसको लेकर के अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती संतों के प्रेमी थे, प्रेम जाते जाते रहते थे, तो क्या कहते हैं कि जब वो थोड़ा होश आया तो गिरीश भाई ने पूछा, महात्मा जी आपको किसने मारा, तो महात्मा जी ने क्या बोला, अभी तू ही मारा है, तू ही मेरे से पूछ रहा है कि किसने मारा है, तो मारने वाला भी कौन है, तू ही तो है, अब बचाने वाला भी कौन है, तू ही तो है, तो सब रूपों में किसकी सत्ता है, तू ही है, छीनने वाला भी तू है, और क्या करने वाला, खिलाने वाला भी तू है, यहां तो दो की सत्ता है ही नहीं। ऐसी भावना यदि आपकी हो गई तभी मुक्त हो, लेकिन ऐसी भावना होती नहीं। देने वाले में तो भगवान का भाव लिखता है, लेकिन लेने वाले में, अरे आप देखो ना भक्तियों के भी, भक्ति के भी अध्याय में देखो, बाबा नामदेव महाराज के रोटी बना के बढ़िया रखे, गरम गरम रोटी अच्छी सी तह लगा करके, और कहीं हाथों धोने गए बेचारे, तो कुत्ता आया पूरी रोटी लिया और चलता बना। अब नामदेव महाराज पीछे पीछे क्या लेके दौड़ रहे हैं, घी, अरे महाराज कुछ तो ध्यान दो, सूखी रोटी कैसे खाओगे, मैं क्या कर दू, घी लगा दू फिर खाओ। तो उस कुत्ते के रूप में, छीनने वाले के रूप में भी उनको दर्शन किसके हो रहे हैं, भगवान के हो रहे हैं मेरे भाई। तो यदि ऐसी भावना से आप शरीर का त्याग करते हो, है ना, जिसने भी शरीर का त्याग किया है सब में भगवान की भावना थी, नरसिंह के रूप में भी यदि शरीर भगवान आए हैं तो बार बार वो इसी रूप में आया है, पक्का है, कौन, और कहीं कहीं तो ये भी डरता था हिरण्यकश्यप के प्रहलाद के रूप में, लगता है नारायण ही आकर के, प्रहलाद के रूप में भी कौन आया है, नारायण ही आकर के मेरे को डरा रहा है। तो सब के रूपों में उसको कौन दिखाई दे रहा है, नारायण ही दिखाई दे रहे हैं। तो दुनिया के जितने रूप हैं सब रूपों में आपको कौन दिखाई दे रहा है, भगवान दिखाई दे जाए तभी आपकी मुक्ति है। भगवान इन सब रूपों में आकर के हमें कुछ न कुछ शिक्षा दे करके हमें मुक्त कर ही रहे हैं। इसके विषय में एक है रावण सनत कुमार से पूछता है कि प्रभु दैत्य दानव रक्षांसि विष्णुनानि तानि च काम वा गतिम प्रपद्यन्ते प्रेत्ते मुनुपुंगव। ध्यान देना, एक मैं अभी बता रहा हूं, कृष्ण के हाथों नहीं मारा गया है, कौन, कंस, कृष्ण रूप में आए हुए परमात्मा के हाथों मारे गए, ये हमेशा ध्यान देना। राम मनुष्यधारी के हाथ में मनुष्य के द्वारा नहीं मारे गए हैं, राम के रूप में आए किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा मारे गए हैं, कौन, रावण। तो राम में राम की बुद्धि, मतलब राम में परमात्मा की बुद्धि है, कंस में किसकी बुद्धि है, परमात्मा की बुद्धि है। और दुनिया के सारे रूपों में यदि परमात्मा की बुद्धि हो जाए तो अभी भी आप क्या हो, मुक्त हो। यही बता रहे हैं, दैत्य दानव राक्षस यह सब विष्णु के द्वारा मारे गए हैं, तो बताओ इनकी कौन सी गति होगी, ऐसा रावण पूछता है किससे, सनत कुमार से। हे प्रभु आप मेरे को बताओ। तो सनत कुमार ने राक्षस अधिपह रावण से कहा, देवतैर निहिता नित्यम गत्वा स्वर्गम अनुत्तमम। जो व्यक्ति देवता के हाथ मरे, देवता माने क्या हुआ, किसी के द्वारा मारा जा रहा हो और उस व्यक्ति में देवता की भावना हो, कौन सी भावना, तो उस व्यक्ति में देवता की भावना करते हुए जिससे हाथ मरेगा उसी का चिंतन करेगा, तो चिंतन करता हुआ यदि शरीर छोड़ेगा तो देवलोक की प्राप्ति करेगा, देवलोक माने स्वर्गलोक की प्राप्ति करेगा। और जब तक भोग रहेगा, भावना रहेगी, तब तक स्वर्ग का संस्कार रहेगा, तब तक स्वर्ग में भोग भोगेगा, और जैसे वो संस्कार हटा फिर से मृत्युलोक में आना पड़ेगा। जो व्यक्ति कर्म के कारण स्वर्ग जाता है उसको भी पुण्य पाप के कारण मरना और जीना पड़ता है, लेकिन विष्णुना ए हतास्ते तू प्राप्तवंती हरे गतिम। जो व्यक्ति विष्णु के हाथ मारा जाता है वह व्यक्ति फिर से हरि के स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है, भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसका आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। ए यदु नंदन निहितास्ते तू न भूय पुनर्भवम प्रापु तस्माद अवताराणाम अंतर्यामी प्रवर्तक कृष्ण है। यदु नंदन, कृष्ण के हाथ जो जो आदमी मारे गए हैं, जो जो व्यक्ति मारे गए हैं, ते न पुनर्भवम प्रापु, फिर से वह संसार सागर में आए ही नहीं है, इसलिए तस्माद अवताराणाम अंतर्यामी, इसलिए सारे अवतारों के प्रवर्तक अंतर्यामी से, अंतर्यामी रूप से मौजूद कृष्ण ही तो हैं। देखो राम के द्वारा रावण मारा गया, लेकिन रावण को दोबारा आना पड़ा, नहीं आना पड़ा, नहीं आया। अरे भाई शिशुपाल और दंत वक्त के रूप में रावण का कुंभकर्ण आए, नहीं आए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भी मारे गए, किसके द्वारा, भगवान के अवतार के द्वारा। कौन सा अवतार, वराह अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष मारा गया और नरसिंह अवतार के द्वारा हिरण्यकश्यप मारा गया, लेकिन वो भी राम और कुंभकर्ण के रूप में आए, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। रावण और कुंभकर्ण भी मारे गए, वह किसके रूप में आए, दंतवक्त और शिशुपाल के रूप में आए, लेकिन वो यदि राम के हाथ कृष्ण के हाथों मारे गए तो फिर से उनका कोई जन्म हुआ नहीं। इसलिए सारे अवतारों के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है, अंतर्यामी रूप से मौजूद कौन है, आत्मा रूपी श्री कृष्ण ही है, कृष्ण शरीर नहीं, कौन है, आत्मा रूप से मौजूद कौन है, श्री कृष्ण ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, क्या है, श्री कृष्ण माने आत्मा, वह सबके प्रवर्तक हैं, वही ब्रह्मा के प्रवर्तक हैं, वही विष्णु के प्रवर्तक हैं, वही महेश के प्रवर्तक हैं, वही हम सारी दुनिया के कौन हैं, प्रवर्तक वही हैं। तो उनकी प्रवर्तकता को, श्रेष्ठता को दिखाते हुए अगला श्लोक आता है, ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यंडम अत्यद्भुतान गोपान वक्त युतान अदर्शयत अजम विष्णून अशेषांशय संभूर यत चरणोदकम स्वशिरसा धत्ते च मूर्ति त्रयात कृष्णो वै पृथगस्ति को अप्य अविकृत सचित मयो नीलिमा। कहते हैं जिन्होंने, जिन परमात्मा ने अजम माने ब्रह्मा जी को बहूनी ब्रह्मांडानी अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन कराया, किसको, ब्रह्मा जी को, एक ब्रह्मांड नहीं अनेक ब्रह्मांड के अनेकों ब्रह्मा जी का दर्शन कराया, कब कराया मालूम है, अरे भाई भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से अघात मृत्यु के मुख रूप अघासुर के मुख से बचा करके रेत पर बैठकर भोजन करने लगे, उसी समय गाय बछड़े दूर चले गए। जब दूर चले गए तो भगवान ने कहा कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं देख के आता हूं। तो भगवान उस दिन कड़ी चावल बना हुआ था, ऐसा वो भागवत में लिखा है। तो भगवान यूं खाते हुए जा रहे थे, क्योंकि बच्चे तो यूं खाते ना तो कहां तक टपकता है, साउथ इंडियन लोगों की तरह नीचे तक टिपकता है। यूं खाते हुए जा रहे थे तो ब्रह्मा जी आए थे देखने के लिए। तो कहा कोई भगवान है क्या जो यहां से इसे चाट चाट के खा रहे हैं। तो उधर चले गए, किधर, जिधर गायें थी। तो इन्होंने पहले गायों को छिपा दिया था, गायों क्या किया था, तो ये देखे कहीं गाय तो दिखी नहीं किशन जी। और जब किशन जी गाय खोजने गए कृष्ण जी, तो यहां ग्वाल बालों को ले जाकर के छिपा दिए। और ब्रह्मा जी लौट किया है तो देखे कि हाँ गो बालक भी नहीं है। तो उन्हें ढूंढे मिले नहीं, उन्होंने आंख बंद किया तो सोच लिया ब्रह्मा जी की सारी करतूत है। तो भगवान ने क्या किया, सबके रूप में बालक बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे शरीर उनके थे, जैसे रंग थे, जिसके पास जैसी डंडियां थीं, सिंगी थी, बांसुरी थे, पत्ते थे, छींके थे, वस्त्र आभूषण थे, शील स्वभाव गुण नाम अवस्था जैसी थी, जैसे खाते थे, जैसे चलते थे, जैसे हकला के बोलते थे, जो व्यक्ति जैसा था, भगवान सबके रूप में प्रकट हो गए। अरे लीला कितने साल तक चली, लगभग लगभग एक वर्ष तक चली। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट करके देखे तो यहां भगवान ग्वाल बालों के साथ वैसे क्रीड़ा कर रहे हैं। सोचने लगे कि गोकुल में जितने ग्वाल बाल हैं वो तो मेरी माया रूपी सैया पे सो रहे हैं, फिर दूसरे ग्वाल बालक कहां से आ गए जो भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी कभी यहां देखें, कभी वहां देखें, कभी यहां देखें, कभी वहां देखें, बताया ना ऊपर ऊपर दृष्टि से उनको दिखाई दिया नहीं। मैंने पहले कथा बताया था, थोड़ा ध्यानस्थ होकर के देखे तो देखे सारे ग्वाल बाल किसके रूप में दिख रहे हैं, कृष्ण रूप में ही दिख रहे हैं। इतना ही नहीं देखा उन्होंने, यह भी देखा कि उनके जैसे हजारों लाखों ब्रह्मा अनेक प्रकार की पूजा सामग्री, कहते ब्रह्मा से लेकर के तिनका पर्यंत सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर के नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर के सब भगवान को अर्पित करके उनकी ही उपासना कर रहे हैं। तो अभी भी हमें जो भी जहां से जैसे भी मिलता है सब किसकी पूजा हो रही है, बोलो भाई, परमात्मा की नहीं पूजा। आप पत्नी को खिला रहे हो, परमात्मा को खिला रहे हो। जो भी उपहार जिसको दिया जा रहा है वह उपहार किसको दिया जा रहा है, बोलो, पत्नी ने दिया जा रहा है। थोड़ा विचार करके देखो तो जितना भी टैक्स कटता है, चाहे वैट हो, चाहे क्या है, सर्विस टैक्स है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई भी टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, ये सारे टैक्स परोक्ष अपरोक्ष रूप से कहां जा रहे हैं, वहीं भी जा रहे हैं ना। तो जितने भी कर्म हो रहे हैं, जितने भी भोग हो रहे हैं, सब समर्पित किसको हो रहे हैं, ये ध्यान रहे, भावना होए, तो उनकी सारी मोह क्या हुआ, समाप्त हुए। अब बाबा लोग तो उदाहरण, मजे वाला उदाहरण देते हैं, बहुत बढ़िया, कि वो कृष्ण नकली ब्रह्मा बन के चले गए और कहा नकली वाला भी आ रहा होगा, उसको तुम लोग घुसने मत देना। तो वहां बैठे और ब्रह्मलोक में रहने वाले जो कौन थे, चौकीदार थे, जब असली वाले ब्रह्मा जी आए तो उनको कहे जाने लगे तो उन्होंने डंडे लगा दिए, कहां जा रहे हो, अरे तेरी मजाल, मैं ब्रह्मा जी हूं, ब्रह्मलोक मेरा लोक है, मुझे तू रोक रहा है। कहा ब्रह्मा जी तो अंदर गए, उन्होंने जाते वक्त बता दिया था कि नकली ब्रह्मा आएगा, वो बहुत बातचीत करेगा, उसको मार के भगा देना। उन द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को क्या किया, खूब पिटाई करके भगा दिया। कहा बड़ा मुश्किल हो गई, मेरा ब्रह्मलोक भी छिन गया, क्या करूं। एक नदी के किनारे ऐसे ही बैठे थे, सड़क के किनारे, सड़क पार करना चाहते थे, ये वाली रोड रही होगी, कौन सी, पैदल रोड, इतनी भीड़ भाड़ी सड़क वाली या ये वाली रोड, ऊंट पे तमाम उनके जैसे कितने ब्रह्मा जा रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब जा रहे थे। ब्रह्मांड जी भाई कहां जा रहे हैं, कौन है। कहा अनेक अनेक ब्रह्मांड के अनेक अनेक ब्रह्माओं की आज क्या है, भगवान क्या वो है, मीटिंग है, सब उस मीटिंग में जा रहे हैं। तो इस ब्रह्मा जी को जो अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा हूं, ब्रह्मा जी का अभिमान एक क्षण में क्या किया, समाप्त कर दिया। हमारे जैसे कितने ब्रह्मांड हैं, और उन ब्रह्मांडों में हर ब्रह्मा विष्णु और महेश होंगे, लेकिन उन सबके प्रवर्तक कौन है, श्री कृष्ण, वह आत्मा ही है। इस पे चर्चा और कब करेंगे, लेकिन कल से विषय और बहुत गंभीर आ गया, इसलिए कल से छोड़ना नहीं, बहुत गजब का। एक व्यक्ति के अंदर में कामना पैदा होगी, हे परमेश्वर क्या मैं मोह रूपी नक्षत्र में पैदा हुआ हूं, क्या मोह रूपी मूल में, कौन से नक्षत्र में, मूल में यदि मैं पैदा हुआ हूं तो मैं किस नक्षत्र में पैदा हुआ हूं, मूल में, तो बाप मेरा दर्शन नहीं कर रहा है, मुंह नहीं देख रहा है, माता ने भी मुझे त्याग कर दिया है, तो जिस बच्चे के माँ और बाप दोनों छोड़ देंगे तो मेरा होगा क्या। हे परमेश्वर तुम मुझे ऐसा त्याग, ऐसी एक करुण व्यथा भक्त की भगवान से एक शिकायत के रूप में आएगी, इस पे चिंतन कब करेंगे, कल करेंगे। ये विषय बहुत बढ़िया है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।